नमस्कार भारत, तारीख 12 जून दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। फ्रांस में संसदीय चुनाव के पहले दौर में राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी के दबदबे का अनुमान, मिल सकती हैं 3/4 सीटें। देश में आंदोलन के रास्ते पर क्यों बढ़ रहे हैं किसान, बात उनकी दिक्कतों और समाधान की।
सबसे पहले तो सरकार को ये करना चाहिए जो उसका जिम्मा भी बनता है कि आप करीब 2 दर्जन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर।
सुनवाएंगे वस्तुल्ला खान की पाकिस्तान डायरी और साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी भी।
क्या सोचा था और क्या पाया, साउथ अफ्रीका की ये कहानी, ये है इनकी परेशानी हर आईसीसी में।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी संसदीय चुनावों के पहले चरण में भारी जीत दर्ज करने की राह पर है। कल हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल में मैक्रों की पार्टी रिपब्लिकन ऑन द मूव को 577 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 400 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल में फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट को मात्र 13% मत मिलने का अनुमान है। नेशनल फ्रंट की प्रमुख मरीन लपेन ने संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की हार के लिए मतदान प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। मरीन लपेन ने कहा, मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा है और इससे मतदान प्रणाली पर सवाल उठने चाहिए। मतदान की इसी प्रणाली के कारण हमारे लाखों समर्थक वोट नहीं डाल सके। ये थे नेशनल फ्रंट की प्रमुख लपेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एक अहम मैच में कल भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है और दक्षिण अफ्रीका इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 44.2 ओवरों में 191 रनों पर सिमट गई थी। भारत ने जीत का लक्ष्य आसानी से 37.5 ओवर में हासिल कर लिया। दुनिया के 7 अमीर देशों के संगठन G7 के देश अमेरिका जलवायु समझौते देश पेरिस जलवायु समझौते पर इटली में बातचीत कर रहे हैं। ये बैठक अमेरिका के पेरिस समझौते से बाहर निकलने के बाद हो रही है। G7 देशों के मंत्री ट्रंप प्रशासन से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि अब वो आगे क्या इरादा रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम की कार्यकारी सचिव पेट्रिसिया एस्पिनोसा ने कहा कि अमेरिका इतनी जल्दी इस समझौते से बाहर नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि पेरिस समझौते को सर्वसम्मत समर्थन मिला था और हाँ, अब हम सभी को अमेरिका के बाहर निकल जाने पर खेद है। अमेरिका पेरिस समझौते से बंधा है क्योंकि समझौते की शर्त के मुताबिक हर सदस्य देश को इस पर कम से कम 3 साल तक टिके रहना है। ये थे पेट्रिसिया एस्पिनोसा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फारमाजो ने कहा है कि चरमपंथी संगठन अल शबाब का एक प्रमुख ठिकाना तबाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोगादिशु के दक्षिण पश्चिम में चरमपंथियों के खिलाफ हमले में सोमाली स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। प्यूर्टो रिको में हुए एक जनमत संग्रह में लोगों ने अमरीका का 51वां राज्य बनने के पक्ष में अपनी राय जाहिर की है। जनमत संग्रह में बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया और विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया। हालांकि जनमत संग्रह का यह नतीजा बाध्यकारी नहीं है और प्यूर्टो रिको तब तक अमेरिका का राज्य नहीं बन सकता जब तक अमेरिकी संसद इस पर अपनी मोहर न लगा दे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हजारों लोगों ने समलैंगिकों को अधिकार देने के पक्ष में आयोजित मार्च में हिस्सा लिया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वॉशिंगटन में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। कई प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्हें ट्रंप प्रशासन से डर महसूस हो रहा है। अमेरिका में 2 साल पहले समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया गया था। स्पेन के राफेल नडाल ने स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका को हराकर 10वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल में नडाल ने वावरिंका को 6-3, 6-2, 6-1 से हराया। नडाल के करियर का यह 15वां ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने अमेरिका के पीट सैंप्रेस के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और अब वह केवल रोजर फेडरर के 18 ग्रैंड स्लैम से पीछे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। नमस्कार भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। जैसा कि आपने अभी समाचारों में सुना, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नई नवेली पार्टी संसदीय चुनाव में भारी बहुमत हासिल कर सकती है। कल हुई पहले दौर की वोटिंग की गिनती जारी है। अनुमानों के मुताबिक मैक्रों की पार्टी रिपब्लिक ऑन द मूव 32% वोटों के साथ 3/4 सीटें हासिल कर सकती है, यानी उसे नेशनल असेंबली की 577 में से 445 सीटें मिल सकती हैं और फ्रांस में विपक्ष एक तरह से हाशिए पर सिमट सकता है। हालांकि चुनाव में मतदान का प्रतिशत 50% से भी कम रहा है। दूसरे दौर का मतदान अगले रविवार को होना है। इसे लेकर मैक्रों की पार्टी की नेता कैटरीन बारबारू ने अपने समर्थकों से कहा कि वो शिथिल न पड़े। कैटरीन कह रही थी कि मतदान का प्रतिशत कम रहने से हमें इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें लोगों की भागीदारी बढ़ानी है। इसी वजह से हमारे अभियान की शुरुआत हुई थी। अगले हफ्ते यही हमारी प्राथमिकता होगी। 39 साल के मैक्रों ने बीते महीने राष्ट्रपति चुनाव में करीब 66% वोट हासिल किए थे। अनुमान जाहिर करते हैं कि संसदीय चुनाव में भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। एग्जिट पोल आने के बाद हमारे सहयोगी दिनेश उप्रेती ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रणवीर नैयर से बात की और सबसे पहले पूछा कि मैक्रों की पार्टी के दबदबे की वजह क्या है।
देखिए, स्थिति कुछ तो वैसी ही रही जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि नए राष्ट्रपति बने मैक्रों की पार्टी को एक बहुत भारी बहुमत मिलने की उम्मीद थी और वही हुआ है। लेकिन एक बात जो कि उनको शायद अच्छी नहीं लगे या खलेगी उनको कि इस चुनाव में 50% से कम मतदान हुआ है और ये मैंडेट को बहुत कमजोर कर देता है। लेकिन उम्मीद है कि अगला जो चरण है जो कि दूसरा राउंड होगा वो एक हफ्ते में होगा तो समय शायद ज्यादा मतदान हो। मैक्रों के लिए बहुत अच्छी जीत रही है ये और इसे ये साबित हो गया है कि जो उनका जो राष्ट्रपति बनना था वो एक कोई फ्लूक नहीं था। मतलब लोग सच में उनके साथ हैं और उनको एक मौका देना चाहते हैं कि वो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है और जो राजनीतिक स्थिति है उसको बदलें और उसमें कुछ एक नई स्फूर्ति आए, कोई नई दिशा मिले।
इमैनुअल मैक्रों ने अपनी पार्टी 1-1.5 साल पहले ही बनाई थी, ऐसे में उनकी पार्टी की जो लोकप्रियता है और जिस तरह के नतीजे आएंगे उनकी अहमियत क्या होगी?
दरअसल देखा जाए तो उनकी जो पार्टी है वो तो कुछ हफ्ते पहले ही बनी है। जिस समय वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ रहे थे वो एक तरह से लगभग एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह से लड़ रहे थे। मेरे ख्याल से 2 महीने पहले उन्होंने अपनी पार्टी रिपब्लिक ऑफ मार्स गठन किया और उसमें 2 नई चीजें उन्होंने की। एक तो करियर पॉलिटिशियन से उनको छोड़कर उन्होंने बिजनेसमैन, स्कूल टीचर या यूथ उनको मौका दिया है कि उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया जाए। और दूसरे उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक तरह से वादा किया है फ्रांस की जनता से कि वो पिछले जो 20 साल से जो फ्रांस में चल रहा था कि रिपब्लिकन और सोशलिस्ट, कभी एक बार रिपब्लिकन की जीत होती अगली बार सोशलिस्ट की जीत होती, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं बदल रही थी, राजनीतिक स्थिति में मतलब एक तरह से एक चक्का जाम हो गया था फ्रांस का, इस हालात को बदलेंगे। अब उनके पास अगले 5 साल के लिए समय है। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो जैसे भारत में मोदी की हालत है, एक बहुत सुदृढ़ मैंडेट उनको मिला है, वैसा ही मैक्रों की भी हालत है यहाँ पे कि अब उन्हें एक बहुत अच्छा जनता का समर्थन मिला है लेकिन अब उन्हें काम करके दिखाना पड़ेगा कि फ्रांस की हालत को बदलना है।
जैसा कि आपने बताया कि पहले चरण में एग्जिट पोल में इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को अच्छा खासा बहुमत मिलने जा रहा है, तो ऐसे में दूसरे चरण की क्या अहमियत रह जाती है?
दूसरे चरण में अब यही रहेगा कि मुख्य अपोजिशन पार्टी कौन सी बन के आएगी। अब तक तो वही लग रहा है कि रिपब्लिकन जो है उन्हें करीबन 100 या 125 सीटें मिलने की उम्मीद है दूसरे चरण में। अपोजिशन पार्टी कोई रह ही नहीं गई है फ्रांस में अब, जो कि एक तरह से सुदृढ़ रूप से मैक्रों को अपोज कर सके, उसके पॉलिसीज को या उसके निर्णय को। एक वन पार्टी वन मैन रूल हो गया है फ्रांस में भी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
रुख भारत का और बात किसानों की। हम हमेशा से सुनते और पढ़ते आए हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। सरकारें लगातार हरित क्रांति और रिकॉर्ड उत्पादन के दावे पेश करती हैं, किसानों के हितों की नीतियां बनाने के दावे होते हैं, लेकिन इस बीच एक आंकड़ा बताता है कि हर दिन करीब 2000 लोग खेती से अलग हो रहे हैं। महीने में यह संख्या 60,000 और साल में 7,30,000 हो जाती है। यह आंकड़ा बहुत से लोगों को परेशान कर रहा है। उनमें से एक हैं किसानों के मुद्दे पर लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ। साईनाथ ने कल किसानों की समस्या को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने जो कहा उसे पेश कर रही हैं मानसी दास।
किसानों के मुद्दों पर लिखने वाले चर्चित पत्रकार पी साईनाथ ने YouTube पर एक हैंगआउट पर किसानों से जुड़ी समस्याओं पर बात की और सरकार पर सीधे किसान के विरोध में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा,
A farmer is not just a farmer. She or he have got kids to send to school and college.
एक किसान मात्र एक किसान नहीं है, उसके बच्चे हैं, उसके दवाई के खर्चे हैं, और देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में कर्जे की एक बड़ी वजह दवाई पर होने वाला खर्चा है। मेरा मानना है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं तो हमें संसद के खास 10 दिनों के सेशन की जरूरत है, जिसमें हम खेती पर आए संकट पर बात कर सकें।
साईनाथ कहते हैं कि किसान आंदोलन ऐसे स्थानों में शुरू हुए जहां सामान्यतः पिछले 1-2 दशकों में इनकी शुरुआत नहीं हुई थी। जिन मुद्दों पर आज देश बात कर रहा है वो विदर्भ, अनंतपुर, रायलसीमा, तेलंगाना में पहले ही ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन इस बार उनकी शुरुआत नासिक और पश्चिम महाराष्ट्र के तुलनात्मक रूप से अमीर जिलों से हुई है। उनका कहना है कि इससे पहले कांग्रेस ने भी कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन ये कर्ज माफी का फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाया।
Not for anyone about having more than 5 acres of land.
उसके लिए नहीं थी जिसके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन हो। ये कर्ज माफी वित्त वर्ष के अनुरूप थी और ये पूरे तौर पर बैंक से लिए कर्ज पर थी, तो ऐसे में वो किसान इसका फायदा नहीं ले सके जिन्हें इसकी जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने बैंक से कर्ज नहीं लिया था।
साईनाथ मानते हैं कि सरकार लोगों को कृषि से बाहर धकेल रही है, यानी लोगों को कृषि से निकालकर किसी और काम में लगा रही है, और ये उनकी नीतियों से जाहिर है।
आज से सालों पहले किसान अगर खेती छोड़कर आता था तो वो उद्योग में यानी मिल में काम करता था। आजकल ऐसा नहीं है। आज की तारीख में अगर कोई खेती छोड़कर आता है तो उसके पास किसी के घर में नौकरी करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
साईनाथ के अनुसार देश में खेती पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। साल 1991 और 2011 की जनगणना से पता चलता है कि रोज लगभग 2000 से अधिक किसान खेती छोड़ रहे हैं, और अगर सरकार खेती से निकले 1.5 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं जुटा पा रही तो जाहिर सी बात है आप उनके सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहते।
आपने किसानों और उत्पादकों की संस्थाएं बना दी हैं, जिसके कारण अब किसान अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने की दिशा में जा रहा है, और वो भी कॉरपोरेट के लिए। ये बात तो एकदम साफ है।
साईनाथ का कहना है कि ना ही बीती सरकार पशु संकट को लेकर चिंतित थी और ना ही मौजूदा सरकार। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में ये संकट और गहरा रहा है। मवेशी पर लगे प्रतिबंधों के बाद ये संकट और गंभीर हो गया है।
गाय बचाने के नाम पर जो हुआ उससे कोल्हापुर का चमड़ा उद्योग चौपट हो गया। आदिवासी प्रभावित हुए हैं, दलितों पर असर पड़ा है, मराठाओं पर असर पड़ा है, किसान प्रभावित हुए हैं, और अल्पसंख्यक और मुसलमान और ईसाई सभी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
किसानों के सामने समस्याएं हैं, लेकिन समाधान क्या है? मानसी दास ने यही सवाल आउटलुक हिंदी के संपादक हरवीर सिंह के सामने रखा।
देखिए, एक तो लगता है कि सबसे पहले तो सरकार को ये करना चाहिए जो उसका जिम्मा भी बनता है कि आप करीब 2 दर्जन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं। सिर्फ दाम घोषणा करने से कुछ नहीं हो जाता जब तक किसान को वो दाम नहीं मिले। अगर आपको लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराना है तो सरकार सब्सिडी दे, किसान के कंधे पर रख करके ये बोझ उसके ऊपर डाल करके आप कीमतों को नियंत्रण में रखें, ये सरकार को नहीं करना चाहिए। एक उनको प्राइसिंग पॉलिसी में इमीडिएट जो है उनको बदलाव करना चाहिए। जो किसानों को कर्ज मिलता है आप उनको ब्याज मुक्त कर दीजिए, क्योंकि जब तमाम सारे आप कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इतने लोगों का राइट ऑफ कर रहे हैं, तो किसान भी इसी देश का नागरिक है, इसके जो वित्तीय संसाधन है उस पर उसकी भी भागीदारी है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
वक्त बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन क्या ये बदलाव सोच बदलने में कामयाब हो रहा है? हम ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसकी वजह है कि एक महिला को उसके ही परिवार से मिली सजा। वजह यह थी कि उसने एक दलित से प्यार किया था और इसके लिए उसे जिंदा जला दिया गया। मामला कर्नाटक के विजयपुरा जिले का है। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं इमरान कुरैशी।
अगर बेरहमी का मिसाल देना हो तो शायद विजयपुरा जिले के गुंडकनाला गांव का दे सकते हैं। सुनिया कस्तूरबाई को, जो बताती हैं किस तरह उनकी अच्छी सी बहू बानू बेगम को उसकी माँ रमजान बी और उनके बच्चों ने कथित तौर पर मार दिया। उन्होंने घर बनाने के लिए रखे हुए इतने बड़े पत्थर से उनके पेट पर मारा। वो 8.5 महीने के गर्भ से थी। जब वो नहीं मरी तो वो उसको खींचकर उनके घर के पास ले गए और उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। कस्तूरबाई अपने आंख के आंसू रोकते हुए वो जगह दिखाती हैं जहां बानो बेगम को जलाया गया। बानो बेगम की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने कस्तूरबाई के बेटे साइबर नशर नप्पा को नूर से प्यार किया और शादी भी की थी। दरअसल दोनों बानो बेगम और साइबर नशर नप्पा घर से गोवा भाग गए जब रमजान बी ने बानो को साइबन्ना के साथ रिश्ते तोड़ने के लिए कहा और उसने इनकार किया। साइबन्ना और बानो 2 साल के बाद वापस आए, ये समझकर कि इतने दिनों बाद उनके परिवार वाले उन्हें देखकर खुश होंगे। लेकिन कस्तूरबाई बताती है, जब वो वापस आए तो हमने हमारी बहू को डॉक्टर के पास ले गए और उसके बाद इन दोनों की शादी कोर्ट में करवाई। लेकिन हमें शक था कि वो कुछ करेंगे तो बहू को पास के एक स्कूल की बिल्डिंग में रखा था। उस दिन अचानक से हमारे फूस की छत को आग लगा दिया और मैं और मेरी दोस्त घबरा कर बाहर आए तो हमने देखा कि हमारे बेटे को उनके पुरुष बच्चे छुरे लेकर भगा रहे थे और उनके दूसरे बच्चे हमारी बहू को स्कूल की बिल्डिंग से निकाल दिया था। ये थे कस्तूरबाई के शब्द। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गुंडकनाला गांव में दलितों और मुसलमानों के बीच किसी भी तरह का तनाव नहीं है। यहाँ दूसरे गांवों की तरह दलितों के घर गांव से दूर नहीं है। इसके बावजूद कस्तूरबाई को उस बात का बहुत दुख होता है कि कोई भी पड़ोसी उनकी बहू को बचाने के लिए नहीं आया। गांव के सैयद ने कहा,
जाति का क्या भी बिक्र नहीं, आवाज क्या क्या भी नहीं, उनका अलग नहीं, हमारा भी अलग नहीं, करो जाति का क्या क्या नहीं।
यहाँ मगर यहाँ के आपके संबंध अच्छे हैं?
हाँ, संबंध अच्छे
और मुसलमान
क्या दुश्मन है क्या नहीं, वो भी अच्छे अच्छे
भाई बंदा,
वैसे क्या लफड़ा नहीं,
वो भी लफड़ा है नहीं, हमारे भाई बंदा वो फिर क्या नहीं।
इस कहानी में एक और दिलचस्प बात यह है कि बानू की बहन की शादी एक दलित से ही हुई थी। इसी बात पर साहिबन्ना को आश्चर्य होता है और एक शक भी है। उन्होंने कहा, बानू की बहन की शादी मेरे ही रिश्ते के भाई से हुई है। वो कलबुर्गी जिले के सूरपुर में रहते हैं। मेरे भाई नमाज पढ़ते हैं। मुझे शक है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने कोर्ट में शादी की। ये थे साइबन्ना के शब्द। पुलिस ने रमजान बी, उनकी बेटी सलेमा, बेटा अकबर और दामाद को हिरासत में ले लिया है। रमजान बी के और दो बेटे और बेटियां अभी भी फरार हैं। उनके पक्ष में बोलने के लिए कोई नहीं मिला। बहरहाल पुलिस का मानना है कि यह एक पूर्व नियोजित खून है। पुलिस थाने के सामने खड़े हुए साइबन्ना को अभी अफसोस है कि वो अपनी पत्नी के साथ वापस अपने गांव आए। इमरान कुरैशी, BBC, कर्नाटका के विजयपुरा जिले से।
और श्रोताओं, अब मैं एक सवाल कर लेता हूं अपने साथी दिनेश उप्रेती से कि क्या उन्होंने अखबार की सुर्खियां देख ली हैं आज की?
जी बिल्कुल, मैं तैयार हूं। सबसे पहली खबर पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार की किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा को सभी अंग्रेजी और हिंदी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। महाराष्ट्र सरकार ने किसान नेताओं से कल मुलाकात की थी और उसके बाद कर्ज माफी की घोषणा की। इस घोषणा से तकरीबन 31 लाख किसानों को फायदा होगा।
जी, BBC Hindi.com पर भी जो हमारी खबर है उसकी भी हेडलाइन यही है, 31 लाख किसानों का कर्ज माफ।
जी, साथ ही किसानों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि 23 जुलाई तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो फिर से आंदोलन कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार लिखता है कि नारायण स्वामी ने प्रणब मुखर्जी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात में राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी की शिकायत की और कहा कि वे उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल कर रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर एक कार्टून छापा है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले अमित शाह ने, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महात्मा गांधी पर चतुर बनिया की टिप्पणी की थी।
जी, उसे लेकर बहस छिड़ गई है।
बहस छिड़ गई थी।
तो इस कार्टून में महात्मा गांधी को एक फोन पकड़े हुए दिखाया गया और व्यंग किया गया, अमित भाई दिस इज व्हाट आई कॉल मन की बात।
जी बहुत अच्छा।
अच्छा वासल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ।
जी पूछिए।
आप काजू किशमिश खाते हैं?
जी कभी कभी मौका मिल जाता है तो जरूर।
तो ये खबर, अगली खबर जो है वो आपको खुशी दे सकती है,
यानी जीएसटी में आप बताने वाले हैं कि काजू सस्ते होने जा रहे हैं।
हाँ, जीएसटी के नई दरों में इन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, यानी कि काजू और किशमिश अब आपको कुछ सस्ते मिलेंगे। जीएसटी काउंसिल ने कुल मिलाकर 66 चीज़ों पर टैक्स घटाया है। इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण समेत कई अखबारों ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। नई दुनिया ने 28 घंटे में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के उपवास खत्म होने की खबर को प्रमुखता से छापा है।
जी,
अखबार लिखता है कि शिवराज ने कहा कि समर्थन मूल्य से कम पर अनाज खरीदना अपराध होगा।
जी दिनेश जी, खेल की खबरें भी छपी होंगी अखबारों में, और हम आप श्रोताओं को बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारत की कल जीत थी उसको लेकर bbchindi.com पर विराट ने जीत के लिए कल कौन से 5 दांव खेले, ये लीड हमारी स्टोरी है, वो आकर पढ़ सकते हैं। और अब हम रुख करेंगे खेल की दुनिया का। भारत ने कल दक्षिण अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। खेल की दुनिया की और क्या हलचल है, जान लेते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत की दक्षिण अफ्रीका पर 8 विकेट से आसान जीत की समीक्षा से।
क्या सोचा था और क्या पाया, साउथ अफ्रीका की ये कहानी, ये है इनकी परेशानी, हर आईसीसी इवेंट यही होता है।
जहां भारत के सामने जीत के लिए केवल 191 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की 78 और कप्तान विराट कोहली के नाबाद 76 रन की मदद से 38 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 20 गेंदों पर केवल 12 रन बनाकर मॉर्न मोरकल की गेंद पर विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक को कैच दे बैठे। इससे पहले भारत ने टॉस हार कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की सलामी जोड़ी क्विंटन डिकॉक और हाशिम आमला शुरू से ही परेशानी में दिखाई दी, जिसकी वजह से जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 76 रन जरूर जोड़े, लेकिन 17.3 ओवर में आमला 54 गेंदों में 35 रन बनाकर आर अश्विन का शिकार बने, तो क्विंटन डिकॉक ने 72 गेंदों पर 53 रन बनाए। खुद कप्तान विराट कोहली ने माना कि एबी डिविलियर्स और मिलर का रनआउट होना टर्निंग पॉइंट रहा।
Before AB got run out, they were going really well, and you know, Faf and AB are rotating it really well. And David Miller, he's a very dangerous player as well. They can drag the team up to 260-270 from any sort of situation. So, yeah, I think those two runouts were, I think, the turning point today.
Bhuvneshwar Kumar ne 23 run dekar 2 aur Jasprit Bumrah ne 28 run dekar 2 wicket hasil kiye. Aur Ashwin, Hardik Pandya aur Ravindra Jadeja ne bhi ek ek wicket apne naam kiya. इस आसान जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जहां उसका सामना 15 तारीख को दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश से होगा। आज भी एक और करो या मरो वाले मुकाबले में श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा। जो टीम जीतेगी वो पहले सेमीफाइनल में 14 तारीख को मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। और अब बात साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन की, जहां कल पुरुष एकल वर्ग में लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल ने पुरुष एकल वर्ग में खिताबी जीत हासिल की। फाइनल में उन्होंने स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका को जमने का मौका ही नहीं दिया, और तीसरी वरीयता के साथ खेलने वाले वावरिंका को बेहद आसानी से 6-2, 6-3, 6-1 से मात दी। आखिरकार क्या है नडाल की कामयाबी का राज, बताया भारत के पूर्व डेविस कप खिलाड़ी और कोच रहे अख्तर अली ने।
देखिए, वो जब दिल्ली में आया था तो हमने उससे बातचीत की थी, तो उसने मैं बताया कि मैं अपना फोरहैंड का ग्रिप थोड़ा चेंज कर रहा हूँ फ्लैट मारने के लिए, क्योंकि अगर हम फ्लैट नहीं मारेंगे तो हमारे रिस्क का प्रॉब्लम फिर हो जाएगा, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने नडाल को देखा दिल्ली में, 4 घंटा उसने एक शॉट को प्रैक्टिस किया था। तो जो प्लेयर 4 घंटा एक शॉट को प्रैक्टिस करेगा, आप समझ सकते हैं कि कितना कंसिस्टेंट होगा।
नडाल ने इससे पहले साल 2014 में फ्रेंच ओपन जीता था, ये उनका 10वां फ्रेंच ओपन खिताब है। ये कारनामा करने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। उधर जमैका के यूसेन बोल्ट ने कल आखिरी बार अपने देश में 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। उनकी दौड़ का गवाह बने 30,000 दर्शक। जीत तो उन्हीं की होनी थी, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वो थोड़ा नर्वस थे। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
चैंपियन भी नर्वस होता है जब आखिरी बार अपने घर के मैदान पर वो अपने घरेलू दर्शकों के सामने दौड़ रहा हो। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से है। वुस्तुल्ला खान आज पाकिस्तान डायरी में इस मैच और चैंपियंस ट्रॉफी के बाकी समीकरणों को लेकर पाकिस्तानी फैंस के नजरिए से अपने ही अंदाज में अपनी बात सामने रख रहे हैं। सुनिए।
पूल मैच में जो दिल भारत ने पाकिस्तान को हरा के तोड़ दिया था, वही दिल श्रीलंका ने भारत को 7 विकेटों से हरा के जोड़ दिया। अब बस इतना और हो जाए कि आज पाकिस्तान श्रीलंका से जीत के सेमीफाइनल में पहुंच जाए, भले डिक वर्थ लुइस फार्मूला ही क्यों ना लगाना पड़े। सच्ची बात तो यह है कि मुझे इस फार्मूले के बारे में कद्दू कुछ नहीं पता, मगर इतना सुना है कि ये फार्मूला बारिश के बाद खेले जाने वाले ओवर्स पे लागू होता है और साउथ अफ्रीका को हराने में यही फार्मूला पाकिस्तान के काम आया था। अगर पाकिस्तान आज श्रीलंका को भी डिकवर्थ लुइस करके सेमीफाइनल में और फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड को रौनता हुआ फाइनल तक पहुंच गया और दूसरी ओर से भारत बांग्लादेश को मारता हुआ फाइनल में आ गया, तो पाकिस्तान के पास पूल मैच में अपनी हार का बदला लेने और भारत को फाइनल में चित करने का एक आखिरी शानदार मौका होगा। इसके बाद बस इतना हो जाए कि फाइनल में भारत की इनिंग्स मुकम्मल होते ही सावन ऐसा टूट के बरसे के ग्राउंड में घुटने घुटने पानी खड़ा हो जाए और फिर पाकिस्तान बस 2 ओवर्स खेले और भारत के 300 से अधिक सूखे रन्स के मुकाबले में बस 15 गीले रन्स बनाए और डिक वर्थ लुइस फार्मूले के अनुसार एवरेज रन रेट पे विजेता हो जाए। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर कुछ ऐसा हो जाए कि श्रीलंका आज का मैच पाकिस्तान से जीत के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा के फाइनल में भारत को हरा दे, या फिर श्रीलंका आज पाकिस्तान को हरा के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार जाए और फिर इंग्लैंड फाइनल में भारत को हरा के मुझे खुश कर दे, या फिर सेमीफाइनल में बांग्लादेश भारत को हरा के फाइनल में भले किसी से भी हार जाए मुझे कोई दुख ना होगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि जिस दिन बांग्लादेश और भारत का सेमीफाइनल हो उस दिन बाढ़ आ जाए और फिर ये बाढ़ अगले 1 हफ्ते तक ना रुके और फाइनल ही कैंसिल करना पड़ जाए, यूं भारत के फाइनल में पहुंच के जीतने का चांस भी बाढ़ में बह जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैं कितनी घटिया सोच रखता हूँ, मुझे क्रिकेट से नहीं बस इससे दिलचस्पी है कि किसी तरह भारत ना जीते। हाँ ऐसा ही है, हाँ मैं घटिया हूँ, मगर मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे करोड़ों हैं जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुंबई, दिल्ली, कुरुक्षेत्र और लखनऊ में इसी तरह सोचते हैं। वो और जेंटलमैन होंगे जो क्रिकेट के मैदान में जूस, चिप्स और सेब वगैरह लेके सिर्फ क्रिकेट एंजॉय करते होंगे। हम तो भैया अपने साथ 70 साल का कूड़ा क्रिकेट लेके ग्राउंड में जंग देखने और करने जाते हैं, और घर में टीवी के सामने भी बैठे हों तो हमारे ग्लास में जूस नहीं जहर भरा होता है। आप अपनी श्यानपति अपने लिए बचा के रखो, हम ऐसे ही थे, हैं और रहेंगे।
कोई जीते बस वो न जीते। पाकिस्तान डायरी पर हमें आपकी राय का रहेगा इंतजार। बताइएगा जरूर कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं। वक्त विदा लेने का है, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी संसदीय चुनाव के पहले चरण में भारी जीत दर्ज करने की राह पर है। कल हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल में मैक्रों की पार्टी रिपब्लिकन ऑन द मूव को 570 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 400 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के एक अहम मुकाबले में कल भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुनिया के 7 अमीर देशों के संगठन G7 के देश पेरिस जलवायु समझौते पर इटली में बातचीत कर रहे हैं। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फार्मोजो ने कहा है कि चरमपंथी संगठन अल शबाब का एक प्रमुख ठिकाना तबाह कर दिया गया है। प्यूर्टो रिको में हुए एक जनमत संग्रह में लोगों ने अमेरिका का 51वां राज्य बनने के पक्ष में अपनी राय जाहिर की है। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो की कमान थी देवाशीष कुमार के हाथ में और उन्होंने संकेत दे दिया है कि वक्त विदा लेने का हो गया है। शाम को 7:30 बजे दिन भर में मुलाकात होगी आपसे। तब तक वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।